బోధిపోతం శరణ్యం వ్రజామః. సర్వో నమస్తే. అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవ మృత్యుజం హోతారం రత్నధాతమం. ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ऋग्वेद 1:1:1. सारे वेदों का भी पहला मंत्र है. और अगर आप स्टैटिस्टिकली जाएं तो दुनिया का पहला सेंटेंस है, क्योंकि जो वर्ल्ड लिटरेचर में ऋग्वेद दुनिया का पहला ग्रंथ माना जाता है, पूरे दुनिया का मतलब पूरे धरती का, उस नाते ये मंत्र को आप ऐसा मान सकते हैं कि संसार का पहला वाक्य है, लिटरेचर का पहला. इसका भाव है, मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं, ग्लोरीफाई करता हूं, जो पुरोहित है, यज्ञ का देव है, ऋत्विक है, होता है और रत्नधातम है. तो मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं. तो अग्नि कौन है? नॉर्मली आगे होता है मानते. अग्नि शब्द का अर्थ आग भी है, आग भी है, और बहुत सारी चीजें भी अग्नि के अर्थ. देखिए संस्कृत में और खास करके वैदिक लिटरेचर में जो शब्द यूज होते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में कहिए, उनके एक रूट वर्ड में होता है, जिस रूट से वर्ड्स ओरिजिनेटेड होते हैं. और हर यूजर, वो ऑथर हो, राइटर हो, स्पीकर हो, जब किसी भी शब्द को यूज करता है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ यूज करता है. नॉर्मल लोगों के लिए धीरे धीरे कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं, फिक्स्ड मीनिंग वाले बन जाते हैं. पर जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, लिटरेचर पर, अलग अलग चीजों पर ज्ञान बढ़ता है, पता लगता है, एक शब्द अनेक जगह पर अनेक अर्थ में यूज होता है, भाषाओं में होता है, सब लैंग्वेज में होता है. और दूसरी बात है कि कोई शब्द 500 साल पहले जिस अर्थ में यूज होता है, जरूरी नहीं कि सेम शब्द आज उसी अर्थ में यूज होता हो. वो शब्द का अर्थ कभी कभी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, कभी वो एक्सपैंड कर जाता है, कभी वो मिनिमाइज हो जाता है. जो लोग लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है शब्द कैसे टाइम के हिसाब से मीनिंग बदलता है, प्लेसेस के हिसाब से मीनिंग बदलता है, यूजर के कल्चरल सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से भी उसके मीनिंग बदलते रहते हैं. ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, जब हम कोई भी लिटरेचर का या किसी भी टेक्स्ट का जब अर्थ करें, इन चीजों को ध्यान देना है. तो अग्नि शब्द आग के अर्थ में प्रसिद्ध है, पर अग्नि शब्द की ओरिजिन क्या है, जिसे हम इसकी इस मंत्र को ठीक से समझेंगे, है ना. कि अग्रणीर भवती अंगम नयति सन नम, ये सारे संस्कृत में बोल रहा हूं, समझाऊंगा, ये सब एटिमोलॉजी है. अंगम नयति सन नममान अक्नोपनो भवती नक्नोपयति नक्लेदयति. चलिए एक एक लेते हैं. अग्रणी भव, अग्रणी से अग्नि बना, अग्नि से आग बना. अग्रणी अग्रे नियते, जो आगे ले जाता है उसको अग्रणी कहते हैं. अब पता है, नेता शब्द, लीडर आप इंग्लिश में बोलते हो, संस्कृत में जिस रूट से बना उसका मतलब होता है नी, ले जाना। पर नेता का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो आपको ले जाता है, आपको आगे ले जाता है, ऊपर ले जाता है। वो अलग बात है कि आजकल नेता इंस्टीट्यूट ऑफ लोगों को आगे ले जाए, लोगों का चीजें आगे ले जाते हैं, खुद ले जाते हैं, तो ले तो जाते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो वो करप्शन कर पैसा ले जाए या लोगों को ले जाए, पर एक्चुअली नेता का मतलब होता है जो लीड करता है, जो आगे रहता है। वो लीडर आपकी घर का भी हो सकता है, आपके इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी का भी हो सकता है, आपके देश का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, पूरे संसार का हो सकता है। ये सोलर सिस्टम का भी लीड करने वाला सूरज है। तो जो जहां लीड करता है उसको वहां अग्नि कहा। तो कहीं अगर सोलर सिस्टम की बात हो रहे हो, वहां अगर सूरज को अग्नि शब्द आया तो वहां उसका अर्थ अग्नि का अर्थ सूरज होगा। आपकी फैमिली मैटर्स के बारे में बात हो रही है, अग्नि कहा, तो घर का जो आपका मुखिया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो अग्नि होगा। अगर पॉलिटिक्स से बात होती हो तो अग्नि जो आपके देश का मुखिया है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो उसका अग्नि होगा। इस आग को भी अग्नि कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, आग को अग्नि क्यों कहते हैं, ये क्या लीड करता है? यज्ञ में जो पहला रिचुअल आप करते हैं, आचमन अंग स्पर्श, तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए करते हैं, वो है अग्नि प्रज्वलन, आग जलाते हैं। अब कहेंगे यज्ञ में क्यों कहते हो, बाकी पूजा पाठ, बाकी पूजा पाठ उस समय होते ही नहीं, थे ही नहीं। ये जो आजकल हिंदुओं में हम जो पूजा पाठ करते हैं, ये नया फेनोमेना है, न्यू फेनोमेना है, ये किसी भी पुराने शास्त्रों में कहीं कुछ होता नहीं था। तो अगर हिंदुओं का कोई एकमात्र पूजा का तरीका था तो वो यज्ञ होता था। तो यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ पॉपुलर था, सबके घर घर में होता था, सबको पता था, तो यज्ञ में जो पहला काम किया जाता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलन किया जाता है। वहां भी जो ये जो फायर है, भौतिक अग्नि, वो भी पूरे यज्ञ को लीड करता है। अब अगर अग्नि आप समझ गए तो आप अग्रणी लीड करने वाला, वो स्पिरिचुअली परमात्मा भी हो सकता है, पॉलिटिकली देश का लीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब हम समझेंगे ये पूरा मंत्र उस अग्नि की जो ग्लोरीफाई करता है, अग्नि एड़े, ये एड़ा है, एड़ा है ना, ये संस्कृत में भी नहीं होता, ये वैदिक संस्कृत में आजकल ये एड़ा साउंड दो तीन जगह मिलता है, मतलब भारत में, एक हरियाणा में मिलता है, जड़ फड़ है ना, हरियाणी में, मराठी में थोड़ी बहुत मिलता है, तमिल में मिलता है। तो तमिल नहीं है, तमिल नहीं है, वो तमिल है, वो ल का थोड़ा हार्ड वर्जन है, ल, वो है अग्नि मेले, ये ल नहीं है, ड नहीं। तो ये एक ऐसा लेटर है जो बाद में ऑलमोस्ट लोप हो गया इसकी प्रोनाउंसिएशन, इवन संस्कृत में भी लोप हो गया है, पर कुछ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आज भी वो उसका यूज मिलता है, मोस्ट ऑफ जगह खत्म हो गया है, उसको सीखना पड़ता है। जो तमिल है, जो हरियाणा के या राजस्थान के जो वो बेल्ट है, और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्से में हम ळ का साउंड ध्वनि सुनते हैं। तो अग्नि की स्तुति करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, वो अग्नि वाला अग्रणी की लीडर है। तो लीडर कैसा है? पुरोहितम, जो आगे रहता है। पुरोहित जानते हैं, अगेन दोबारा, अब ये पुरोहित शब्द लेते ही नॉर्मली हम समझते हैं जो प्रीस्ट होते हैं उनको पुरोहित कहते हैं, जो मंदिर में या घरों में पूजा पाठ करते कराते हैं उनको पुरोहित कहते हैं। पर पुरोहित का जो लिटरेरी मीनिंग है, पूरा तो कहते हैं सामने, फ्रंट में, हित कहते हैं कल्याण, वेलफेयर हित, जिसके सामने दूसरों का वेलफेयर या कल्याण होता है, मतलब उसके हर एक्टिविटीज में, उसकी हर रोल में, जहां सबसे पहला जो जो प्रायोरिटी होती है वो दूसरों की भलाई करना। इसीलिए आप देखेंगे प्राचीन जमाने में जो राजाओं के मंत्री होते थे, नॉर्मली जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल साइंस में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, 18 तरह के मंत्रियों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, 18 तरह के। तो उसमें एक मंत्री या मिनिस्टर या सेक्रेटरी, आज की कंटेम्प्रेरी में जो भी बोले, उसको भी वो पुरोहित कहलाता था। नॉर्मली वो वही शास्त्रों के विद्वान होता था, और उसका काम है जो राजा जिसको बहुत ज्यादा श्रद्धा या ट्रस्ट करते थे, वो कभी भी, क्योंकि राजा को पता है बाकी मिनिस्टर कंप्रोमाइज करे न करें, सच बोले न बोले, ये जरूर सच बोलेंगे जन सबके कल्याण के लिए, राजा के और प्रजाओं के कल्याण के लिए। बाकी मिनिस्टर क्यों ना बोले, क्योंकि राजा है, राजा के आसपास रहने वाले लोगों को फायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी बहुत होता है। इसीलिए ये एक बड़ा सुंदर कहावत है, कुछ लोगों के ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, मतलब जो कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनके ज्यादा क्लोज रहोगे तो तुम्हारी छोटी छोटी चीजों के लिए भी तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, ज्यादा दूर रहोगे तो फिर जब जरूरत पड़े साथ नहीं देते। तो इनसे दूरी भी बना के रखना चाहिए, क्लोज भी बना के रखना, अगर लाइफ में सब ठीक ठाक हो। तो मंत्री लोगों को पता है, राजा को अगर सच बोले जी ये गलत है, ये सही, ये गलत है, राजा खुश, राजा को तारीफ चाहिए जी, सब मुझे वाह वाह करे, और कोई मिनिस्टर कहे नहीं सर वो तो वहां भूखा पड़ा है, वहां सूखा पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो राजा का मूड खराब होगा। तो आजकल की तरह थोड़े ही जॉब से हटाएंगे, सीधे तो जेल में डाल देंगे, गर्दन उड़ा देते थे। तो सच बोलना मुश्किल होता था। आज भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में नेताओं को सच बोलना मुश्किल होता है, और हमेशा होता था जो बड़े राजाओं के आसपास रहते थे। पर कुछ लोग जरूर होते थे जो हमेशा राजा को सच बोलते थे। जैसे आज हम पुरोहित की बात कर रहे हैं, मैंने एक दिन और एक बार आपसे चर्चा की थी, दुर्मुख की चर्चा की थी, है ना, दुर्मुख जिसका नाम है दुर्मुख, मतलब धू मतलब खराब, मुंह मतलब मुंह, जिसका उसका नाम ही खराब मुंह, उसका काम क्या था, वो एक पोस्ट होता था स्पाय का, है ना, जासूस का पोस्ट होता था। मतलब अगर दुर्मुख राजमहल के अंदर आ गया कोर्ट में, राजा के कोर्ट में, तो राजा समझ गए समथिंग कुछ गड़बड़ कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि उसको गलत ही बताने आना है उसको, क्योंकि बाकी लोग तो बता नहीं सकते हैं, डरेंगे। तो वो उसकी जब है कि तुम्हारा तुम्हें उसको अभयदान मिलता है, अभयदान समझते हैं, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा, तो कुछ भी देश में राज्य में कुछ गड़बड़ होता है तुम बताओ। इसी तरह वो तो दुर्मुख है, उसका पोस्ट है, उसको बताना ही है, पर पुरोहित मोरली अपने आप को उस लेवल पर रखते थे कि हमेशा राजा और प्रजा का कल्याण करते थे। जैसे आप देखते हैं, है ना, चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे, राम के वशिष्ठ थे, और मॉडर्न जमाने में हम देखते हैं शिवाजी के रामदास थे, और भी होंगे हमें नाम पता नहीं है। और चंद्रगुप्त की के चाणक्य की, जिन्होंने जो इंडियन पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसको एक नया एंगल दिया, उसको एक एक स्टैंडर्डाइज बनाया। चाणक्य से पहले भी बहुत पॉलिटिकल साइंस पर हमारे यहाँ काफी लिटरेचर लिखे गए, इवन महाभारत का बहुत बड़ा पोर्शन जो है, लोग आज भी वेस्टर्न और ईस्टर्न स्कॉलर्स इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए महाभारत के बहुत सारे ऐसे, महाभारत केवल स्टोरी नहीं है, ध्यान रखिए महाभारत में स्टोरी तो मुश्किल से 30 या 35% होगा, रेस्ट ऑफ थिंग वो एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें बहुत सारे चीजों का डिस्कशन होता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पॉलिटिक्स का डिस्कशन है, पॉलिटिक्स मतलब राजा को कैसा होना चाहिए, मिनिस्टर्स कैसा होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो अलग अलग सिस्टम पर। तो जिसको चाणक्य ने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सुंदर रूप से बनाया, वो चाणक्य जो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, सिद्ध थे, तो वो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, है तो पुरोहित ब्राह्मण। उसके जो पुरोहित कैसे होते थे मंत्री, देखिए, तो चंद्रगुप्त के मगध राज्य के इतने बड़े राजा चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में थे, और मंत्री भी वो भी चाणक्य मंत्री जिसका चंद्रगुप्त राजा उसके नीचे होता था, चलता था चाणक्य का, चंद्रगुप्त का नहीं। उसके बावजूद भी उनका जो रहन सहन है वो जानने लायक है। वो अपने राजधानी से, किला से बाहर, उनकी जो गुरुकुल है जहां आश्रम है, छोटे से कुटिया में रहते थे, झोंपड़ी की कुटिया में, और उनकी वर्णन करते हैं कि कभी कभी उनके वो झोपड़ी से कहीं पानी टपकता है वो बारिश के कारण, है ना, कहीं कुछ टूटा हुआ है, किसी उनके वो छत के ऊपर जो घास फूस की जो छत है उसके ऊपर ये आपकी लौकी या जो 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 सब्जियां उगी हुई हैं, ऐसे घरों में रहने वाले चाणक्य थे जो पूरे मगध का, और मगध जो कि भारत की स्वर्णिम युग का सबसे बड़ा युग, जो सबसे बड़ा एरिया पर वो राज करते थे, उसके वो महामंत्री थे। तो कहते एक बार शाम को किसी विदेशी अतिथि चाणक्य से मिलने के लिए आया, तो रात को समय निश्चित हुआ कितने बजे उनको आना है, तो सपोज 8 बजे का टाइम निश्चित हुआ, और वो थोड़े जल्दी आ गए, आधा घंटा एक घंटा पहले। तो कोई पहले तो इतना कोई तामझाम होता नहीं था, तो शिष्यों ने अंदर ले गया चाणक्य, जहां बैठ के कुछ काम कर रहे थे, तो उस समय दिया जला के काम करते थे रात को, तो वो दिया जला के काम करते थे, और वो अतिथि बैठा रहा जब तक उनका टाइम ना हो जाए। 8 बजे का टाइम हुआ तो फिर चाणक्य ने मिलने के लिए आए। चाणक्य ने जिस दिया से काम करते थे उस दिया को बुझाया, उसकी जगह एक दूसरी दिया जलाई, फिर अतिथि को पास बुलाया, उनसे बातचीत की। ये छोटी सी बात थी, किसी को नोट कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, पर उस अतिथि ने इसको नोट किया कि उन्होंने जिस दिया को जला करके काम करते थे, जब मेरे से मिले वो दिया को बुझाया, एक नई दिया जलाई, दूसरी दिया जलाई। तो उन्होंने पूछा जब बातचीत खत्म हो गई जाते समय कि मेरी एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप दिया, दूसरी दिया मेरे लिए क्यों जलाया? चाणक्य ने कहा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पहले मैं राजकीय कार्य कर रहा था, मतलब ऑफिशियल काम कर रहा था, वो जो दिया ये ऑफिशियल पैसे का, राजकोष का, टैक्स का पैसा है, उसमें जो घी या तेल डाला गया है वो सरकारी पैसे, मतलब राजकोष से लिया गया पैसे से है। अब आप मेरे से मिलने आए हो, ये पर्सनल मीटिंग है, ये जो दिया है ये मेरे पैसे का, इसमें जो तेल डाला है वो मेरे पैसे का तेल है, चंद्रगुप्त का मंत्री है, पुरोहित ध्यान रखिए। अरे ये कोई आप कहेंगे कि ऐसा कोई इक्का दुक्का होता है, नहीं, मॉडर्न इंडिया में भी हम देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो कनॉट प्लेस में साड़ी खरीदने किसी दुकान में गए, वो खुद करते थे सारा काम, खुद करते थे अपने कपड़े भी, वो खुद साफ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री होते हुए भी, उससे पहले वो मिनिस्टर्स भी रहे, अलग अलग नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे। तो एक दुकान में गए साड़ी खरीदने के लिए अपनी पत्नी के लिए, तो दुकानदार कनॉट प्लेस में, तो वो ताजुब हुआ, प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं साड़ी खरीदने के लिए, तो उसने दिखाया, बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाया, जो रेट पूछा, तो उस समय की जो भी है, जो जो एक एलिट या पैसे वाले लोग, जिस उस समय का रेट तो अलग था, तो दिखाया, तो शास्त्री जी ने बोला इतने महंगे महंगे मत दिखाओ, मेरा तनख्वाह इतनी है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर, उन दिनों प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह कुछ 100 हुआ करते थे, कितने 100 रुपए हुआ करते थे, वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह के अलावा उसको वो करोड़पति बन जाते हैं, तनखे से नहीं बाकी चीजों से। तो मेरी इतनी तनख्वाह है, मुझे इतने का साड़ी दिखाओ, मेरी पत्नी के हिसाब से मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या पैसे वाला नहीं। दोनों ने सस्ते में 3-4 साड़ियां लेकर के आए, और खुद अपनी गाड़ी से जाकर के लेकर आए। उनके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी उनकी वाइफ या बच्चे नहीं चला सकते थे, उनके लिए वो घर के लिए अलग से गाड़ी यूज करते थे। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल जो मुझे पता है या आपको भी पता होगा, ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनका उद्देश्य है दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के कल्याण में अपना फायदा ढूंढना नहीं, वो अपने को गरीबी में रखते हुए भी, अपने को अपनी जिस सामर्थ्य में रखते हुए भी दूसरों का भला करते हैं। और वो लीडर करता है, वो ये लीडर की डेफिनेशन में आता है। तो अग्नि का अर्थ जो अग्रणी, जो लीड करने वाला, उसके लिए एक और खूबसूरत एटिमोलॉजी आती है, कहते हैं अंगम नयति सन नममानः। वो अग्नि कहलाता है, अग्नि मतलब अग्रणी लीडर, जो अपने शरीर को, अपने आप को झुका करके दूसरों को उठा लेता है। आग के लिए भी वही है, आग में आप कुछ चीज डालते हैं, घी सामग्री कुछ भी डालते हैं, वो नीचे भी जाए तो भी वो उसको वो जला लेता है। तो लीडर कौन के होता है, जो अपने आप को दूसरों के बराबर ला करके उनको ऊपर उठाता है। अगर लीडर अपने आप को ऊंचा रखा, अपने हाव भाव में, एटीट्यूड में, व्यवहार में, वो किस बात का लीडर फिर बना? कोई ऐसा लीडर लीडर नहीं बनता है ना, उसको प्रजाओं का या लोगों का, जो नीचे रहने वाले लोग, उनको कोई रियल स्नेह या प्यार या श्रद्धा मिलता है? कोई जबरदस्ती तो बहुत कुछ हो जाता है, अलग बात है। वही लोग अमर हो जाते हैं, वही लोग हमेशा के लिए लोगों का प्यार के केंद्र में आते हैं, जो लोगों के लेवल पर आते हैं, आम लोगों के लेवल पर आकर के आम लोगों को ऊपर उठाते हैं। जब आप किसी को उठाना हो ना, मान लीजिए कोई गिरा पड़ा है, आपको इसको उठाना है, अब उठाना चाहते हो, कैसे उठाओगे? तो आपको झुकना पड़ता है ना, अब बिना झुके कैसे उठाओगे? अगर आप अकड़ के खड़े रहे, उठ जा, ऐसा भी लीडर हो सकते हैं, तो वो लीडर थोड़े हो। तो दुनिया में कोई सही लीडर हो, अग्रणी अग्नि, वो अपने आप को झुका के दूसरों को उठाने वाला होता है, ऐसा अग्रणी अग्नि कहलाता है। तीसरी उसकी अग्नि शब्द की जो अर्थ बताते हैं, अक्नोपन भवति। अक्नोप धातु जिसका अर्थ होता है भिगाना, वेट करना, है ना, पानी में जो भीग जाता है, जो नहीं भीगता है वो अक्ना को गना हो गया, अग्नि। अक्नोपन भवति न क्लेदयति न क्लोक्ले क्लोपयति, जो भीगता नहीं है। क्या भाव है इस आग के अर्थ में भी वो लगेगा, ये आग पानी से इसकी बैरी है, पानी से इसको, ये पानी में भीगता नहीं है। तो वो लीडर रियल लीडर होता है, जो काम करते हुए भी किसी में भीगा हुआ नहीं होता है। भीगा हुआ मतलब दो तरह के लोग होते हैं ना, एक पानी के अंदर डूबा तो बाहर आया तो भीगा हुआ है, एक पानी के अंदर नहीं भी डूबा, ऊपर से पानी छिड़क दिया, भीगा हुआ दिखता है। एक दूसरे टाइप के भी लोग हैं, जो पानी के अंदर कितना भी डूबे, ऊपर से सूखा दिखते हैं। देखिए, ये कमल का पत्ता है, फ्लावर लीफ है, पानी में रहता है, इसके ऊपर भी पानी है, पर हमेशा सूखा मिलेगा। इसीलिए जो ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान, ऐसा व्यक्ति जो सब में रहते हुए भी सबसे अलग रहता है, उसको कमल के पत्ते की तरह कहते हैं, पानी में रहते हुए भी भीगा नहीं है। क्या भाव है इसका? सब करो, लीड करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, काम को आगे बढ़ाओ, पर क्रेडिट लेते समय खुद हमेशा पीछे मिलेंगे, ढूंढना पड़ता है कहां गया, है ना? जिसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं निष्काम कर्म, गीता में, अलग अलग लिटरेचर में, आप काम करो, पर काम की जो कर्तृत्व का जो जो क्लेम है कि डूअरशिप की क्लेम से अपने आप को हटा दो अंदर से। एक्सटर्नली तो रिफ्लेक्शन अपने आप होगा, जब आपके अंदर वो भाव ही नहीं रहे कि मैं कर रहा हूं, तो आप काम करते हुए भी अब काम से अलग हो जाते हैं, निरासक्त, डिटैच्ड लाइफ। और क्या होता है वो जो डिटैच्ड लाइफ के लिए यही एग्जाम्पल दिया जाता है, कमल पत्र की तरह। संस्कृत में कहते हैं पद्म पत्र मिव अंभसा, जैसे पानी में पद्म या कमल का पत्ता होता है, जो ऋषि मुनि ज्ञानी सन्यासी या लीडर होते हैं, जो रियल लीडर होते हैं, वो वैसे होते हैं। सब काम करने के बावजूद भी अपने आप को कहीं सामने शो नहीं करते, पीछे रखते हैं। तो लीडर्स बहुत तरह के होते हैं, हम उस लीडर की बात कर रहे हैं जो वेद मंत्र, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र जिसको अग्नि शब्द से कहा। आप अगर हमारे प्राचीन शास्त्रों को देखें, उपनिषदों को, दर्शन शास्त्रों को, ग्रंथों को देखें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज देखने को मिलेगा। किसी भी लिटरेचर में, किसी भी एंशियंट इंडियन लिटरेचर में, किसी भी राइटर का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पूछेंगे आपको कैसे, फिर लोगों को पता कैसे चला इस बुक को इसने लिखा। उस किताब को, उस बुक को लिखने के सैकड़ों हजारों सालों तक किसी को नहीं पता होता था इस बुक का राइटर कौन है। बहुत सारे अजम्पशन करते थे। तो कोई 100 साल के बाद, 200, 500 साल के बाद कोई रिसर्च करके या पता लगा के कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करके फाइंड आउट करते थे कि इस बुक का राइटर कौन है। आजकल तो हम दूसरों के बातों को भी चुरा करके अपने नाम पर छाप देते हैं, और फिर अगर अपनी आप कुछ नई चीज लिखी भी डाली तो फिर वो पेटेंट, फिर रॉयल्टी की डिमांड है ना, वो पेटेंट भी ऐसा मेरे मरने के बाद भी मेरे 10 पीढ़ी तक भोगते रहेंगे क्योंकि मैंने कुछ चीजें नहीं बनाई। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आप कहते हैं ना, जीरो जीरो भारत में बना, जीरो का कंसेप्ट, नंबर का कंसेप्ट, ज्योमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, अलजेब्रा, फिलोसफी, एटम्स की कंसेप्ट, और स्पिरिचुअली बहुत सारे फिलोसफिकल बातें जो एंशिएंट इंडिया में हुआ, पर कहीं नहीं मिलेगा इसको बताने वाले कोई पेटेंट या रॉयल्टी मिलती। आजकल योग, आपको मजेदार बात देखिए, योग शास्त्र को महर्षि पतंजलि ने लिखा, उनका नाम पता कहीं नहीं था, सैकड़ों सालों के बाद पतंजलि ने इस बुक को लिखा पता चला। पर उस योग को यूज करके, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता ना, इन्हीं लोगों का काम होता है, सैकड़ों ऐसे योगा पोस्चर हैं, प्राणायाम के अलग अलग वर्जन है, मेडिटेशन के अलग अलग वर्जन है, जिनको इन्होंने पेटेंट कर रखा है। और इंडियन लोग क्या करते हैं जी, ये तो अभी 10-15 साल से थोड़ा इंडियन लोगों में क्रेज बना योगा के प्रति, वो भी इसीलिए कि क्योंकि गुरु लोगों ने किया तो हमें भी लगा भाई कुछ अच्छा ही होगा। तो इंडियन लोगों के नेचर है ना, जब भारत में होते हैं या भारत में 10-20 साल पहले देखें, योगा को कोई पूछने वाला थोड़ा ही था। आप कोई भी इंडियन नॉलेज की बात करो, मोस्ट ऑफ इंडियन का एक ही राय होता है, एक पंडितों का चीज है, तुम क्या हो भाई अंग्रेज है ना, अंग्रेज बनो, बच्चों को सिखाओ योगा, ये सब ये ऋषि मुनि थोड़े बनना है, क्या कर रहे आप, सीखते हैं घर घर में सीखने लगे। तो हम तो हमेशा यही रहे अपने चीजों के बारे में अंधे रहे। अरे गोरे लोगों ने सैकड़ों योगा पोस्चर, मेडिटेशन के वर्जन, प्राणायाम पर पेटेंट कर रखा है, जिस पतंजलि ने या और दूसरे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए, इन्होंने कभी दावा नहीं किया। इसी तरह आयुर्वेद के ऊपर, अब भारतीय लोगों को तो पता ही नहीं आयुर्वेद होता क्या है, कहेंगे जड़ी बूटी है ना। और मजेदार बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दर्जनों दर्जनों आयुर्वेद की चीजों पर पेटेंट कर रखे हैं, हल्दी की। अब तो आप देखते हैं अमेरिकन स्टोर्स में भी आपको मिलेगा टर्मरिक का, तुलसी का, 50 चीजों का मिलेगा। कोई इंडियन कंपनी, इंडियन मार्केट करने वाला इसको यूज करते हैं, इससे कमाई हो सकती है, कोई करता नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में भरे रहते हैं ना, हमारी बीमारी है, हम अपनी चीजों को बड़ा हीन भाव से देखते हैं ना, पैसा भी कमाने को मौका मिले तो भी नहीं मिलाते हैं। ह्यूस्टन में जितना योगा स्टूडियो चलते हैं, जिसकी 95% गोरे लोग चलाते हैं, और पूरे अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर का योगा का मार्केट है, उसमें इंडियन लोगों का जो शेयर अगर देखें 10% से भी कम है। हम सबको गोरा बनना है ना, वो खैर वो अलग टॉपिक है, मैं टॉपिक से नहीं जाएंगे। बात है कि फिर जब ये हल्दी पे नीम पर पेटेंट, हल्दी पर पेटेंट, इस पर पेटेंट करने लगे, तो भारत सरकार को कोई अच्छा ऑफिसर हुआ होगा, नेताओं को तो क्या अकल होता है, तो फिर धीरे धीरे पिछले 25-30 साल से ये चला, तो वो ढूंढने लगे कोई आयुर्वेद का कौन है भाई, वैद्य ढूंढो। तो उनको भेजते थे लंदन में, अमेरिका के अलग अलग कोर्ट में, जो जहां पेटेंट की जो कोर्ट होते हैं, कि वहां जाकर के बताओ कि भाई ये हमारे यहाँ 5,000 साल, 3,000 साल, 4,000 साल पहले से हम यूज कर रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है, ये लिटरेचर है, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, आप कैसे पेटेंट करोगे। तो एक आधा चीजों पर हमें हमने वो स्टे भी लगाया, उसको रोका भी, कुछ चीजें हम रोक नहीं पाए क्योंकि हमें पता नहीं चला। भाव है ये सब चीजें क्यों हुआ, टॉपिक पद्मपत्रम इवाम भसा, उस समय तो वो इनोसेंट थे। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है इवन इतने सुंदर सुंदर नया ओरिजिनल ज्ञान दुनिया को देने के बावजूद भी हर ऋषि मुनि को लगता है ये मेरा ज्ञान नहीं है। उपनिषदों में बड़ा सुंदर बात आती है, कहते हैं इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तत विचक्षिरे, ऐसा हमने सारा ग्रंथ लिख डालते हैं, लास्ट में लिखते हैं ऐसा हमने उनसे सुना, उन ज्ञानियों से जो हमारे पूर्वज है, तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम से क्या रखा है, ये हमारा ज्ञान थोड़ी है, हमने तो उनसे जाना। इसीलिए कोई ऋषि मुनि अपना नाम नहीं लिखता था किसी ग्रंथ को लिखते समय। ध्यान रखिए, अग्नि अग्रणीर भवती अक्नोपन भवती नोक नक्नोपयति, वो अग्नि कहलाता है, अग्रणी कहलाता है, जो कहीं सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं भीगा हुआ नहीं होता है, कीचड़ में रहते हुए भी साफ है, पानी में रहते हुए भी भीगा नहीं है, कमल पत्ते के समय सब कुछ करने के बाद भी क्रेडिट अपने लिए नहीं लेता, कहीं पीछे मिलता है। एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, नैरेटिव है, कितना सच है झूठ पता नहीं। तो पुरी में एक जगन्नाथ मंदिर बड़ा बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, उस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में एक बात आती है, इस मंदिर को जिसने बनाया राजा इंद्रद्युम्न, तो जो मंदिर बन गया सब हो गया, तो एक दिन इंद्रद्युम्न को रात को सपना आया। सपना ये है कि भाई तुमने मेरे लिए इतना कुछ जगह, भगवान ने सपने में आया, नैरेटिव है स्टोरी, बनाया, तो तुम मेरा परम भक्त है, कुछ मांगो, जो मांगोगे दूंगा। तो हिस्ट्री लिखने वाले लिखते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर की हिस्ट्री लिखने वाले लिखते हैं कि इंद्रद्युम्न ने मांगा कि अगर सचमुच आप मेरे से प्रसन्न हो, खुश हो, तो मुझे यही वर दो कि मुझे निसंतान बना दो। निसंतान समझते हैं मतलब मेरे खानदान में कोई पैदा ना हो, कोई हो तो ना बचे। तो बोले ये कौन सा वर हुआ, ये तो अभिशाप होगा। बोले नहीं, मेरे लिए यही वर चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारा निसंतान होगा, खानदान में कोई बचेगा नहीं, पर इस तरह का वर क्यों मांगा? वो इसीलिए कि मेरे पीछे अगर कोई रहेगा, मेरे बच्चे पोते कोई भी रहेगा वो दावा करते रहेंगे कि भगवान का मंदिर मैंने बनाया, पर भगवान का मंदिर कौन बना सकता है, मैं कौन हूं बनाने वाला। ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी इस पाप का भागी बने कि मंदिर का बनाने वाला मेरे दादा था, मेरा परदादा था, मेरा वो था वो था। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं मेरे खानदान में कोई रहे जैसे कि कोई दावा कर सके कि ये मंदिर मेरे मेरे पूर्वजों ने बनाया था। तो कहानी सच्चे झूठे वो बड़ी बात नहीं, पर कहानी का मैसेज वही वही अग्नि का स्वरूप को ध्यान रखिए, वही इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करता है। जब आप जो अग्नि होता है, अग्रणी होता है, लीडर होता है, वो अक्नोपन भवती, कहीं भी रहते हुए भी अपने आप को अलग रखता है। अग्नि का और एक स्वभाव है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। आग देखिए ऊपर की ओर जाता है, आप इसको पहाड़ पर रखो, जमीन के नीचे रखो, हमारे तो यहां फ्लोर से भी नीचे है, नीचे जाता है ना, कहीं भी रखो आग ऊपर की ओर चलता है, उसको उल्टा करके रखो तो भी ऊपर की ओर जाएगा। पानी का ठीक अपोजिट, हर हर नेचर का अपना अपना क्वालिटी है, पानी के अपने भी गुण धर्म है। हम यहां आग से बात कर रहे हैं तो आग के बारे में तो पानी से थोड़े कंपेयर कर रहे हैं। पानी को आप कितना भी ऊपर रखो, बादल बन के ऊपर भी जाता है ना, तो जब पानी बन के आता है तो फिर नीचे की ओर आता है। पहाड़ों में भी बरसता है ना तो भी वो नीचे की ओर जाता है। अच्छा आग ठीक उल्टा है, आप नीचे 500 मीटर गड्ढा करके भी आग जलाओ तो ऊपर की ओर आएगा। ध्यान रखिए अग्नि लीडर की क्वालिटी है। लीडर कौन होता है? जो खुद आगे उड़ता है, और आगे उड़ता है दूसरों को साथ लेकर आगे उड़ता है। और एक आग का बड़ा सुंदर क्वालिटी है, वो जो जल करके आगे उड़ता है, जो कुछ भी उसके अंदर आप डालो उन सबको वो अपने साथ लेकर चलता है ना। लकड़ी डालो, घी डालो, सामग्री डालो, वो सबको अपना जैसा बना लेता है। आग में लकड़ी डालते ही लकड़ी थोड़ी लकड़ी रहेगी, अब जलती हुई लकड़ी को आप क्या बोलते हो? कहते तो लकड़ी थोड़े बोलते हो, क्या बोलते हो? आग बोलते। ये है लीडरों की क्वालिटी, आइडियल लीडर की। जब आप उनके सानिध्य में होते हो, साथ होते हो, वो आपको अपने जैसा बना डालते हैं। इसलिए प्राचीन काल में जब कोई शिष्य या कोई सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति गुरु के पास जाता था, तो वैसे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है गुरु के लिए जो शब्द मिलता है अग्नि। अग्नि ज्ञान का भी एक रिफ्लेक्शन है, नॉलेज और अग्नि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो गुरु को अग्नि कहा क्योंकि ज्ञान अग्नि है। तो जिसने पढ़ लिया वो भी अग्नि बन गया, आग बन गया, तो गुरु अग्नि है। तो शिष्य जब कुछ पूछने की दृष्टि से गुरु के पास जाता था, एक तो होते हैं जो फॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वही रहते हैं, रोज थोड़े कि वो कुछ वो तो वहीं रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं है। कोई बाहर से कोई व्यक्ति ऑकेजनली आ जाता था कुछ पढ़ने लिखने सुनने के लिए, तो उसके लिए नियम होता था वो कैसे आए, कुछ उपहार कुछ गिफ्ट लेकर आता था। और वो गिफ्ट क्या? समित पाणी ही गुरुम ब्रजेत, हाथ में समिधा लेकर के आते थे। आपको भी भाई गिफ्ट ही लाना था, कुछ अच्छी चीजें लाते, खाने पीने के सामान लाते, कपड़े लाते, कुछ और लाते, ये समिधा लकड़ी लेकर के क्यों आते थे? और खाली लकड़ी नहीं, समिधा, वो लकड़ी जो जलने लायक हो तभी समिधा कहलाता। समिधा लेकर समित पाणी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब तक तुम जलने लायक नहीं होगे तो तुम्हें ज्ञान देंगे तो धुआं पैदा करोगे। आप कोई भी लकड़ी डाल दो आग में, अगर वो लकड़ी जलने लायक ना हो तो वो जलेगा कम, धुआं ज्यादा करेगा, नुकसान ज्यादा करेगा। तो जो जलने लायक होता है, सूखा है प्रॉपरली, उसमें वो गुण है जो जलने लायक हो, उसको समिधा कहते हैं। शिष्य आता है ये समिधा लेकर के, ये लक्षण है कि मैं जलने के लिए तैयार हूं, जलने मतलब उस ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं योग्य हूं। और जैसे ही शिष्य गुरु के पास आता है समिधा बन के, समिधा को अग्नि में डालते ही क्या होता है, थोड़ी देर के बाद समिधा खुद अग्नि बन जाती है, फिर दूसरी लकड़ी डालनी होती है, फिर शिष्य क्या करता है, कुछ सालों के बाद वो खुद अग्नि बन जाता है, खुद गुरु बन जाता है, फिर दूसरों को जलाता है। तो अग्नि का एक क्वालिटी है, जो भी उसके पास है वो उसको अपने जैसा बना लेता है। जो रियल लीडर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, जो भी उनके आसपास रहता है वो उनको भी अपना जैसा जला देते हैं। दो तीन चीजें और कहेंगे, कंक्लूड करेंगे, टाइम हो रहा है, अग्नि के बारे में। फिर वो मौका मिलेगा नहीं, अग्नि से रिलेटेड मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अग्नि का और एक बड़ा खूबसूरत क्वालिटी है जो लीडर्स में होता है, वो क्या है, वो चीजों को कुछ भी उसमें डालो या तो अपने जैसा बना लेता है, अगर अपने जैसा नहीं बना पाया तो भी कुछ ना कुछ काम करके जाता है, उसको शुद्ध बना लेता है। शुद्ध समझते हैं, प्योर बना देता है। जैसे आपको मेटल्स डालेंगे, लोहा सोना, वो उसको जला नहीं पाता, आग नहीं बना पाता, पर जो सोना या लोहा तांबा वगैरह जब आप आग में डालते हैं तो क्या होता है, लोहा और सोना जो मेटल्स हैं उनकी जो अशुद्धियां हैं, जो इंप्यूरिटीज हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लोहा पूरा प्रॉपर लोहा बन जाता है, स्टील बन जाता है, सोना कुंदन बन जाता है ना, तप तप करके कुंदन बना, तपा तपा करके। इसी से शब्द बना तपस्या, तप। तप समझते हैं ना, अपने आप को तपाना। तप का एक्चुअली मतलब होता है जलाना। अब खाना कम खा रहे हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, इंद्रियों को रोक रहे हो, इसमें जलाना कहां होता है, अपने आप को शुद्ध कर रहे हो। शुद्ध करने के लिए जिस कष्ट, जिस परेशानियों के थ्रू गुजरते हो, उसी के नाम तपस्या है, जलाना। तो जो लीडर अग्रणी अग्नि, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं, मंत्र कहता है, जो जिसके पास कोई आए या तो वो अपने जैसा बना लेता है, अगर अपने जैसा नहीं भी बनाता है तो उसको बेकार नहीं करता, उसको शुद्ध, ज्यादा जिस रूप में आया उससे बेटर, ज्यादा शुद्ध बना करके भेजता है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, और मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं जो यज्ञ की देवता है। देवता का अर्थ होता है देव दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, जो कुछ हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है या दूसरों को या हमारे लाइफ को शाइन करता है। देवता तो कोई भी हो सकता है, माँ बाप, बच्चे, पेड़ पौधा, गुरु, जिसका भी तुम्हारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है। हम डॉक्टरों को भी देवता बोलते हैं, जब आपकी इलाज कोई हमें कोई बड़ी बीमारी हो और कोई डॉक्टर हमारा ठीक कर देता है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, जॉब है, वो उसका काम है ठीक करना, पर तब भी जब हमें ठीक कर देता है, खास करके इंडियन जो लोगों के अंदर जो भाव है, वो भाव वही हजारों सालों की वो जो डीएनए में आपके बसा हुआ है, उस डॉक्टर के प्रति हमारी जो श्रद्धा पैदा होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मेरे लिए भगवान बन के आए, वो भगवान क्या, वही देवता। वो टीचर हो, डॉक्टर हो, किसान हो, नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स हो, जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो देवता होते हैं। वो परमात्मा भी देवता है, ये अग्नि भी देवता है। और ये देव का एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज है, वो जो देवता होते हैं, दिव्य डिवाइन होते हैं, वो सिर्फ आपको, वो खुद डिवाइन नहीं होते हैं, वो आपकी, आपको भी उस डिवाइन की ओर ले चलते हैं। कभी आप खुले बाहर अकेले शांत मन में पार्क में या किसी लेक के किनारे या खुले जगह पर बैठो, जहां आपके पास मोबाइल फोन ना हो, कुछ ना हो, वह शांति में अकेले आकाश की ओर देखो, चांद को देखो, तारे को देखो, किसी को भी देखो, पेड़ को देखो, और आप आकाश को देखते देखते आप डूब गए। आकाश कितना विशाल है, व्यापक है। आप पहाड़ की ऊंचाइयों को देखते देखते डूब गए। अगर जब आप डूब जाते हैं तो वो पहाड़ की ऊंचाई, आकाश की व्यापकता, समुन्द्र की गहराई सिर्फ आपको वहीं तक नहीं रखते, इवन पक्षियों की जो आवाज, जब आप डूब जाते हैं उसमें, आजकल तो बहुत ही कम लोग डूब पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा जितना बिजी थे मैटेरियल लाइफ में थे, बाकी ये टीवी फोन कंप्यूटर ने तो हमें उतना भी छीन लिया, तो कहां हम नेचर को एंजॉय कर पाते हैं। जब आप एंजॉय करके डूब जाते हैं तो आकाश सिर्फ आपको आकाश तक नहीं रखता, जिस दिन भी आप आकाश की विशालता में खो गए वो आकाश आपको अंदर ले जाता है कि उस परम विशालता की ओर परमात्मा किसने बनाया हो। समुद्र की गहराई से आप इस संसार की गहराई की ओर चले जाते हो, तो हर वो दिव्य देवता आपको दूसरे बड़े दिव्यता की ओर ले चलता है। इसी तरह जब भी आप यज्ञ को स्पिरिचुअली करते हो, यज्ञ को सिर्फ मैटेरियली नहीं, फिजिकली नहीं, यज्ञ में आहुति दे रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, सब ठीक है, भाव से भी कर रहे हो, पर जिस दिन आप उसमें डूब गए हो, आग को, कभी कभी आग में नजर पड़ता है ना, अगर आप ज्यादा बकवास नहीं करते, फोन में लगे इधर देखो उधर देखो, ये ड्रामेबाजी नहीं करते, बिल्कुल फोकस होकर यज्ञ करते हैं, और कभी उस ऊपर उड़ते हुए आग को देखते हो, और अगर आप स्पिरिचुअली उसमें डूब गए, वो आग के ऊपर उठना आपको कहीं पहुंचा देता है, ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। तो ऐसा जो परमात्मा अग्रणी, यहां परमात्मा भी नेता है, हमारे राजा भी अग्नि हो सकता है, आग भी अग्नि हो सकता है, ऋषि भी अग्नि हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अग्नि, ऐसा जो अग्नि यज्ञस्य देव मृत्युजम ऋत्युजम ऋतौ ऋतौ यजति इति ऋत्युजम, बस एक मिनट और लूंगा, जो हर सीजन में यज्ञ करता रहता है उसको ऋतु कहते हैं। ऋत्विक यज्ञ का पुरोहित को ऋत्विक कहा जाता है, और ऋत्विक होने का अधिकार उसी को होता था प्राचीन काल में, जो खुद हर सीजन में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में यज्ञ करता रहता था, उसको यज्ञ कराने का अधिकार होता था। वो परमात्मा भी जो 24 घंटे हर मौसम में, हर सीजन में, सृष्टि हो प्रलय हो कुछ भी हो, और परिस्थिति में सृष्टि यज्ञ तो चलता रहता है, जो राजा है, जो लीडर है, उसको भी हर परिस्थिति में, अच्छा हो बुरा हो, अभी को कोविड का सिचुएशन था, अभी भी है, जो देखो उस देश ने, वो देश जहां के लीडर अच्छे होते हैं बड़े आसानी से उभर गए, लोगों को कम कष्ट होने दिया, जहां लीडर खराब होते हैं लोग परेशान हैं, लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी अच्छा देश में अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं, घर में भी कभी अच्छे मौसम आता है, बुरे मौसम आता है, मौसम तो मौसम का मतलब अच्छे और बुरे सिचुएशन आते रहते हैं, पर जो लीडर होता है हर सिचुएशन में उसको मैनेज करता है, हर सिचुएशन में आगे बढ़ता जाता है, ऐसा जो ऋत्विक है। और एक लास्ट रत्नधातमम, इसी के साथ पूरा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लीडर जो रत्नों को, रत्नधातमम मतलब रमणीयानाम धनानाम धातृतमम्बा, अच्छे अच्छे धन संपत्तियों का जो रखने वाला, होल्ड करने वाला या देने वाला, मुझे बड़े मजेदार बात है, जो धन कमाता है रखता है वही दे सकता है, उसको देना चाहिए। संस्कृत में दो शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक है दाता, दाता समझते हैं, देने वाला, और एक है धाता, ध है ना, त थ द ध, द के बाद ध आता है, द और ध में क्या फर्क पता है, द जो है वो सॉफ्ट होता है, ध जो बोलते हैं थोड़ा हार्ड होता है, संस्कृत में भी उसको कहते हैं कोमल वर्ण और कठिन वर्ण, और द ध में और कोई फर्क नहीं, द को जब हार्डली बोलते हैं वो ध बनता है। दान और धन में फर्क यही है, धन है इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए, पर जब आप देने लगते हैं तो आप सॉफ्ट बन जाते हैं, आपका हार्ट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एटीट्यूड सोवर बनता है, सौम्य बनता है, सुंदर बनता है। जब आप छोड़ते नहीं है तब हार्ड बन जाते हैं, कठोर बनते हैं, आपकी एटीट्यूड भी बड़ा इगोइस्टिक होता है, इगोइस्टिक लोग ही कम देते हैं ना, मैंने कमाया मैं क्यों, तो मैं, तो कमाने वाला कमा करके जमा करने वाला तो धा हो जाता है, धाता, और कमा करके बांटने वाला दाता हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। परमात्मा रत्न धाता भी है, रत्न दाता भी है। वो संसार की हर प्रॉस्परिटी का मालिक भी वही है, और सबको वो खुले मन से देता भी रहता है। सारा प्रकृति को बिछा रखा है, तुम्हारी जितनी मेहनत करो उतना बटोरना है, बटोरो। रत्न धातमम अग्निमीळे पुरोहितम, मंत्र देखिए, कंक्लूड करते हैं। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। मैं उस अग्नि अग्रणी लीडर की ईड़े स्तुति करता हूं जो पुरोहित है, जो यज्ञ का देव है, जो ऋत्युक है, जो होता है, जो रत्न धातमम है। इस मंत्र के द्वारा हम कुछ चीजें लीडरशिप की, जो वैदिक कंसेप्ट है लीडरशिप की, उसके बारे में थोड़ी बहुत जाना। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।